भावा अवस्था आएगी, तो भगवान के थोड़े से दर्शन के साथ साथ में इसका भी अपने आप रियलाइजेशन हो जाएगा। ये ठीक पद्धति है, और पहले से कोई कल्पना करना ये ठीक है।
राजेश के ऊपर एक प्रश्न है मेरा। एक बार मेरा अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन हो गया, उसमें उन्होंने कहा कि रियलाइजेशन जो चीज़ है ये कि सडनली आएगा, एक तरह मतलब कि एक क्षण के अंदर आएगा ये।
हाँ,
इसका उन्होंने कहा कि कोई वो स्लोली धीरे धीरे
नहीं है,
उन्होंने कहा कि ये तो या तो रिलेशन है या नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ है कि थोड़ा रिलेशन नहीं है, बीच वाली कोई चीज़ नहीं है, उन्होंने कहा। और मैंने कहा कि नहीं, ये तो स्लो धीरे प्रोसेस जैसे आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके आएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, तो एक या तो होगा या तो नहीं होगा, दो ही चीज़ें, बीच में कोई स्टेज नहीं। तो इसमें क्या है, कैसे
क्या होगा कि नहीं,
या तो आप रियलाइज हो या तो नॉट रियलाइज हो, मतलब बीच में नहीं है।
नहीं, ऐसा नहीं,
ऐसा है कि किस तरह से, या तो स्टेजेज हैं धीरे धीरे,
का स्टेज है तो इसका स्टेज क्यों नहीं होगा। ज्ञान के भी विकास का एक स्टेज है कि नहीं है। बचपन में एक जो ज्ञान हो गया, इसके बाद में रियलाइजेशन और उसकी अनुभूति और उसकी वृद्धि नहीं होगी ज्ञान की होगी कि नहीं। एक आदमी जन्म लिया, छोटा सा बच्चा है, एकदम जन्म लिया, साथ साथ में सब जितना ज्ञान है, जितना जो कुछ है, सब एक उसी समय आ गया नहीं। उसी तरह से हम लोग कोटि कोटि वर्षों से, कोटि कोटि जन्मों से भगवान की अनुभूति से वंचित हैं, उनको दर्शन नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा से भूल गए हैं, विचलित हो रहे हैं। और ये धीरे 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 जैसे कि सूर्य उदित होता है, प्रकाश होता है, एक ही बार प्रकाश हो जाता है, एक ही बार 12 बजे में जैसे सूर्य होते हैं वैसे ही रहते हैं, और जब डूबते हैं तब वैसे ही रहते हैं, और जब उठते हैं तब ऐसे ही 12 बजे जैसा प्रकाश रहता है। आखिर विकास क्रमशः होता जाता, फिर धीरे धीरे होता जाता, ह्रास होता जाता है। रात एक ही बार आ जाए तो आ जाए, धीरे धीरे क्यों आए। शरीर में बल आता है तो एक ही बार बल जो आना चाहिए वो पूरा आ जाता है। तो पढ़ने लिखने की और विकास करने की ये सब जो शिक्षाएँ, ये क्यों हैं। तो शिक्षा एक ही साथ में आ जाए, ऐसा नहीं, सब चीज़ का क्रम विकास है। ये भी एक तरह का तत्व ज्ञान है, ये विकास धीरे धीरे होगा। एक आदमी जैसे कि नारद जी थे, वाल्मीकि जी को कहा, प्राधारी जघन्य पापी थे, डकैत दस्यु थे, उन्होंने कहा जो राम राम करो, इससे सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने विश्वास किया और राम राम कहने उठे तो राम ही नहीं आए कहने में। बहुत चेष्टा की, नहीं, जब हार गए तब उन्होंने कहा जे मैं तो राम नाम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जे साक्षात तुम एक बात करो, मारो काटो कहा है तो तुम मरा मरा कर, तो मरा तो आ गया करो। तो मरा मरा करते 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 जब आ गया तो कहा जैसे यहीं पर बैठ, उठना मत जब तक नहीं आऊं, कोई चिंता मत करना, भूख प्यास खाना पीना सब पीछे, जब मैं आऊँगा तब होगा, तुम उठना मत। बस वाह रह गए और कहा जैसे यही तुम मरा 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 कर। तो मरा मरा करते 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 मरा मरा राम 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 हो गया। उनके शरीर में दीमक लग गए न, और वो चलता रहा, भूख प्यास सब भूल गए, हड्डी टड्डी भी सब खा लिया कीड़ों ने, थोड़ा सा अवशेष कुछ बचा, दीमक से भर गया। हजारों 60,000 वर्ष हो गए, तब ब्रह्मा जी आए और कमंडलू से जल लेकर के उनके रूप में छिड़क दिया, और छिड़कने के साथ दिव्य शरीर उनका हो गया। राम राम जप रहे हैं, इसके बाद में आकर के हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रख दिया। देखो ये भगवान का रियलाइजेशन, उन्होंने भगवान का दर्शन किया। किंतु सभी नहीं, कुछ नहीं आया, अभी तक देखा थोड़ा सा। इसके बाद में भगवत प्रेम कैसा होता है ये अनुभव किया। अनुभव करके तब रामचंद्र जी का वो जो लीला है प्रेम युक्त, वो सब उनके हृदय में धीरे धीरे आया, धीरे धीरे ऐसी शक्ति आई जिसको जो कहें वही हो गया। तो ये धीरे धीरे होता है, एक बार एक नहीं होगा, आज तक भी कुछ ही नहीं हुआ एक बार। ये आजकल का जितना विज्ञान है एक ही बार हो गया, आखिर धीरे धीरे। पहले तो हवाई जहाज नहीं थी, उसके पहले भारतवर्ष में थी, उसकी चिंता करते करते ये जर्मन और किन लोगों ने ढांचा खड़ा किया, कुछ थोड़ा सा उड़ान भरा, इसके बाद धीरे धीरे करते 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 300-400 आदमियों को लेकर के एक जहाज उड़ जाती। इसकी कल्पना थी, पहले ये था जैसे ये भविष्यवाणी क्या है, जो आकाशवाणी है ये क्या है। धीरे 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 उन्नत होते 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 आज इस स्थिति में पहुँच गए हैं, जैसे आदमी बोल रहा है उसको देख रहे हैं, वो हंस रहा है, कैसे बोल रहा है और उसकी वाणी भी सुनाई पड़ रही है। ये धीरे धीरे विकास हुआ, इसलिए ऐसा ही होता है, भगवत तत्व ज्ञान का विकास होता है एक बार में। जैसा भी भगवान का नाम करो, वो नाम ही भगवान स्वरूप है, वो जो कुछ कराना है वो धीरे 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 धीरे, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत, और गुरु के मुख से कुछ सुनना है, अनुभूति उससे आएगी, दोनों मिलकर के। जितना हम सुनते जाएंगे हृदय निर्मल होता जाएगा, नाम का प्रभाव भी प्रकाश भी उतना होता जाएगा, अंत में यही राम हरे कृष्ण राधा कृष्ण के रूप में, परिकर के रूप में, ब्रज समस्त वो उसमें भी लाए हैं, सब आपके सामने आ जाए। यह है कर्म विकास। आगे श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, नर्तृपि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, और इसके बाद में बहुत और भी आ रहे,
और भी
बहुत ऊपर
कहाँ तक।
प्रेम तो अभी आरंभ, पहली सीढ़ी है। प्रेम का लक्षण क्या है? तुम्हारी जो अच्छी चीज तुमको सबसे अच्छी चीज लगती है वो उसको दे देगा, उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करेगा। तो अब यहाँ से सेवा आरंभ हुई, सेवा करने का फल क्या हुआ? वो प्रेम और परिपक्व रूप में आदान प्रदान के आनंद के रूप में वो आएगा।
इनके जिन मित्रों ने कहा, वो भी तो एक शब्द कह नहीं दिया, उनको कहने में धीरे 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 कहना पड़ा सेंटेंस, और मित्रता जो हुई वो धीरे 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 बढ़ता गया, एक शब्द नहीं हो गया।
तैयार करो,
तैयार
इसको पकड़ करके रखना है। आदान ही सबसे बड़ा है, जो परवाह उठाएंगे हरी कथा, इसमें कपटता मत करेंगे, जो हरी कथा मांगे बिना मांगे भी उदान करेंगे, अपना पराया बुद्धि मत रखें, सब प्रदान करते हैं ना, है? करते हैं ना ऐसा। तुम साक्षी है, ये देते हैं ना सबको,
मेरे को छोड़ के
उस पानी में थोड़ा सा थोड़ी सी चीनी डाल दो, समझ गई, समझ रहा है तू, चीनी डाल, उसमें एक नींबू निचोड़ दो, और एक बाल्टी में सफ़ेद पानी भरा पड़ा है, सादा निर्मल पानी। हम कहेंगे जरा शरबत लाना तो, या शिकंजी लाना तो, कौन सी बाल्टी लाएगी? क्यों, वो भी तो पानी भरा है ना, चीनी कितना, इतना सा दिया। अच्छा और एक उदाहरण सुनो, दो बाल्टी पानी है ना, एक में थोड़ा सा लाल रंग दे दो ना, थोड़ा सा, और उसको मिला दो, अब उसका कॉलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा ना। अच्छा, अब दोनों में पानी ही तो भरा था ना, अब यदि हम कहेंगे ये पानी लाओ तो कौन सा बाल्टी लाएगा, रंग वाला लाएगा कि सादा वाला? सादा वाला लाएगा। और कहेंगे ये रंग लाओ तो कौन सा लाएगा? इसी तरह से संसार में जितने कर्म हैं उनमें थोड़ा सा भगवान का भाव मिला दिया जाए तो वो भक्ति हो जाए। घर का काम ही करना है, बाजार करना है, पढ़ना है, लिखना है, सब काम करना है, माता पिता की सेवा है या सब काम कर, रसोई बनाना है, जो कुछ काम है, इसमें मैं ये कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये भाव जोरदारी से ही सिखाना है। और ये परमार्थ का कारण, सुख और शांति का कारण बन जाता है। दिन भर रात भर सांसारिक बातें होती रहती हैं ना, उल्टा सीधा किसी का नाम लेते हैं, क्या क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, और उसमें जीवन में यदि थोड़ा सा भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, इतना नहीं आता है, राधे श्याम कर दिया, राम राम कर दिया, बस बस जीवन की धारा एकदम प्रकट है, तुम्हारा जीवन सुखमय और शांतिमय। इसलिए सब करो, किंतु साथ साथ में थोड़ा सा भगवान का सवेरे नाम लो, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मैं आपकी, बस यही कह रहे, बस राम राम सवेरे कर करके अपना स्नान करो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, घर का काम करो, अंडे गोश्त मत खाना, प्याज लहसुन मत खाना, ये सबसे बचा बचना, जहाँ तक हो सके झूठ न बोलो, बस भगवान सबके हृदय में है, वो सब समय रक्षा करेंगे, और भवसागर की चुप्पी से ऐसे काम, दुख कोई नहीं आएगा। आज जो लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, उनको दुख हो, दुख आने वाला भी भगवान के नाम से, यही मंत्र है, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण इसमें भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता, और इससे आदमी उसमें लिखा जी भगवान का नाम करो, समस्त धर्मों का ये सार, घर में बैठो अपना पढ़ो लिखो सब करो, किंतु भगवान को मत, जब रास्ते में चलो ना प्रार्थना, प्रभु मैं सुकुशल आ जाऊँ, हनुमान जी कैसे थे देखो, भगवान का नाम लिया और समुद्र को पार कर गए नाम के बल पर, नाम के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। आदमी यदि कोई बतलाए जैसे आज एक ये आदमी मरने वाला है, तो उसको क्या तैयारी करनी होगी, एक आदमी मर रहा है, उसको 5 मिनट का समय है, मरने में 5 मिनट बाकी, उसको क्या करना चाहिए, हैं? बस ये याद रखना चाहिए, उस समय में कोई काम नहीं करेगा, माता पिता भाई बंधु सखा मित्र रुपया पैसा दवाई इलाज डॉक्टर कोई कुछ नहीं करेगा, बस उसके कान में कहो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, इतना नहीं सुन सकते, राम 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे, बस इतना ही पढ़ो, एक तुलसी का पत्ता दे दो, बस उसका काम एकदम। बाहर कर देंगे मक्खी को, जैसे बाहर कर देता ना दूध से, ऐसे आप लोगों को बाहर कर देंगे, मैं हमारे काम का अब रहा ना।
कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय महाप्रभु जी जगत में आकर कृष्ण प्रेम जो दिया था और उसमें मैं आज से 500 वर्ष पहले प्रेम की बाढ़ ला दी, उसमें कर्मी ज्ञानी भक्त सभी लोग उस बाढ़ में डूब गए। जीव मात्र का प्रथम अंतिम और एकमात्र कर्तव्य भगवान के चरण में भक्ति करना है। भक्ति के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है, बल्कि भक्ति की रक्षा करने के लिए और कुछ कर्तव्य हो सकता है? ये हमारे जितने भी मनीषी हो गए हैं, जितने भी ऋषि हो गए हैं, जितने भी भारतवर्ष में अवतार लेने वाले हुए हैं या विदेशों में जो महापुरुष लोग हुए हैं, सबकी एक राय है, इसमें दो राय नहीं। जिन्होंने इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि की है, जो इस जगत का पालन पोषण करते हैं, उनके प्रति आभारी हमको रहना चाहिए। न जाने कब मृत्यु हो जाए, कोई ठीक नहीं, किंतु गारंटी है जरूर हो जाए। जगत में यदि कोई चीज सत्य है, परम सत्य है, जिसको सभी लोग समझते हैं, ये सत्य है कि सबको मरना है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और एक दूसरी बात भी डिनाई नहीं कर सकते, इस जगत में सब कुछ रहने पर भी दुख जरूर भोगना पड़ेगा, इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए साधारण रूप में मैं कल बतला रहा था, इन दुखों से, मृत्यु से बचने के लिए ये सबके जो क्रिएटर हैं उनके प्रति शरणागत हों, उनकी भजन करें, भक्ति करें, तो सहज रूप में ये चीज हो सकता है। और जितने भी हमारे वेद से लेकर के उपनिषद, पुराण, शास्त्र जो अथॉरिटी है, जिसको कभी भी झूठलाया नहीं जा सकता, इसका एक वर्ड भी झूठा नहीं है, काल्पनिक नहीं है, सब जगह यही बतलाया गया, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम उनके अंश हैं। यदि खूब अच्छी तरह से विचार करें, शरीर पार्ट पार्सल नहीं है, आत्मा है। उस आत्मा का ज्ञान नहीं होने से हमको इतना दुख, जिस समय ये हो जाएगा बस सब दुख न जाने कहाँ चले जाएंगे, और ये सृष्टि भी वो पार कर जाएगा। उसी भक्ति को पाने के लिए मैं बहुत से उसके अधिकार हैं, प्लेटफॉर्म हैं, इसी के संबंध में मैं बतला रहा था। भक्ति क्या चीज़ है, कैसे आरंभ होती है और उसे क्या होता है, इस चीज़ को बतला रहा था। मैंने पहले बतलाया, संसार में सभी लोग सुख खोज रहे हैं, किंतु जब हैरान हो जाते हैं, जब सब तरह से असहाय हो जाते हैं, जब कोई भी सहारा नहीं होता, ये भी भगवान की कृपा है जो ऐसे में डाल करके कर देते हैं, तो कोई ईशान, उस समय प्रभु ही केवल दिखाई पड़ते हैं। मरने के समय में भगवान के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं, इसलिए भगवान का नाम कान में देते हैं। यदि आदमी ये समझ जाए कि ये बचेगा नहीं, किसी तरह से नहीं बचेगा, आजकल में ये मरने वाला है, उस व्यक्ति से पूछा जाएगा, भाई तुम क्या करोगे, क्या चाहते हो, तो क्या कहेगा, या उसके घर वाले जो अति बुद्धिमान है क्या करेंगे। मथुरा में एक करोड़पति हैं, मथुरा में टॉप के धनी, किंतु कुछ भक्त परिवार है, उनके एक नौजुवक लड़के को कैंसर हो गया, ब्रेन में कैंसर हो गया, इंग्लैंड अमेरिका कहां कहां ले गए, लाखों रुपए खर्च किए, किंतु बचा नहीं सके, मर भी नहीं रहे, कोमा में काजने कितने दिन पड़े रहे, घर वाले
क्या करें ना करें,
सोचे थे जल्दी ये मर जाए तो भी ठीक है, इनको भी शांति हो जाए। तो हम लोग गए, हम लोगों को से थोड़ा सा रिलेशन आते जाते हैं, हमने उनकी परिक्रमा की, कान में मंत्र दिया हरे कृष्ण और कहा जी एक एकादशी का फल भी इनको दे दो। एक दो एक दिन ही के बाद की बात, उस समय में भगवान के नाम के अतिरिक्त क्या सहारा रहता है, कुछ भी सहारा। इसलिए पहले से ही जीवन के प्रारंभ से ही इस चीज को संसार का काम करते हुए भी थोड़ा सा प्रभु का नाम किया जाए, आत्मा की अनुभूति होगी, साथ साथ में सब उसके हृदय में शांति और सुख रहेगा इस जगत में भी पर जगत में। तो मैंने बतलाया भगवान की भक्ति जब हम संसारी किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं, सब कामना वासना संसारी को छोड़कर वो हमारे कर्म से जो कुछ हो रहा है होने दो, केवल मात्र भगवान का भजन करेंगे, भगवान की प्रीति के लिए कुछ भी करेंगे तब इसको कहते लौकिक क्रिया, वैदिकी या जो कुछ भी है बस उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, अपने के लिए ना करें, दूसरों के लिए ना करें, वो प्रसन्न हो, इसको कहते हैं भक्ति। ये भक्ति केवल भगवान के लिए ही है, यहाँ तक कि शंकर ब्रह्मा या किसी भी गणेश सूर्य दुर्गा के लिए भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि भगवान नहीं, कृष्ण राम इत्यादि भगवान है, उन्हीं के प्रति ये भक्ति शब्द का प्रयोग है, दूसरों के प्रति। आजकल तो मातृभक्ति पितृभक्ति देशभक्ति ये सभी कुछ चली आ रही है, ये यथार्थ प्रयोग नहीं है भगवान के प्रति। जो विश्व ब्रह्मांड का सृजन कर सकता है, जो सर्वशक्तिमान हो, उसके लिए प्रयोग किया गया इसका। अब वो भक्ति कैसे होती है, पूर्व जन्म के या इस जन्म के संस्कार से, साधु पुरुषों के मिलने से, जिस रास्ते चलाते हैं उसके द्वारा सुकृति होती है, उसे संस्कार बनता है। जैसे कर्मों का संस्कार बनता है, घर में पिता इंजीनियर हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, सहज रूप में बच्चे का झुकाव तो उस उधर में थोड़ा सा हो जाता है, किसी का नहीं भी होता है वो दूसरे तरफ में झुकाव होता है, किंतु कुछ देख करके होता है। इसी तरह से संस्कार बनते हैं। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को लेकर मंदिर में गया, रोज रोज प्रणाम करता है और बच्चे का संस्कार उससे बन जाता है भगवान के तरफ। कोई भगवान के लिए कोई कुछ दे दिया, इसे उसका संस्कार बन जाता है। यदि संस्कार बन गया इस जगत में आने पर, किसी महात्मा के साथ में सचमुच में महात्मा, प्रोफेशनल महात्मा नहीं, प्रोफेशनल माने आजकल प्रोफेशन, अर्थ उपार्जन करने के लिए सहज तरीका है साधु बन जाओ, ये सब नहीं, सचमुच में ऐसा कोई महात्मा, तो उनके संग में रहने से कुछ और संस्कार नवीन बनते हैं, तो हृदय में एक श्रद्धा आती है और भगवान को भजन करने की स्पृह आती है। तब दूसरी बार पहली बार साधु का वो जो भाषण है ये सब नहीं समझ पाता, उनके उपदेश नहीं समझ पाता, शास्त्रों को उपदेश नहीं समझेगा, किंतु जब सुकृति और संस्कार होगा तब फिर साधुओं के बातों को वो विचार कर सकता, उसको फॉलो करने की चेष्टा वो करता है, अन्यथा नहीं कर सकता, उसमें कुछ शक्ति आ जाती है। उस समय में कल हमने बतलाया किस प्रोसेस से आदमी किसी एक्सपर्ट गुरु के पास में जाता है, ये भी भगवान की व्यवस्था है। नहीं तो कोई कर्मी, कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, कोई योगी, बहुत से लोग भारतवर्ष में आते हैं, विदेश के लोग पहाड़ में चले जाते हैं महेश योगी के इधर में, महेश योगी कहता है जी कैसा ये है, कोई भक्त गए तो कहा जैसे तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, भक्ति है, तुम इधर में मत आओ, जो कुछ नहीं जानते उनके लिए ये योग, यहाँ पर भक्ति है इससे बढ़कर के और कुछ नहीं, वो भी कहते हैं। लोग इधर उधर भ्रमित हो जाते हैं। गीता, भागवत, रामायण, पुराण, शास्त्र सबका यही एक पथ है, भगवान को पाने के लिए दूसरा पथ नहीं है। एक भक्त्या हम एक यात्रा, जिधर से चलो इधर से चलो एक ही जगह में पहुंचेंगे, ये बात ठीक नहीं है। जिस पथ से चलेंगे हम उसके पास में जाएंगे, ये कुछ लोग कहते हैं, किंतु ये विचार ठीक नहीं है। दिल्ली से हम पूरब की तरफ में चले, एक पश्चिम की तरफ में पहुंचे, तो बनारस में पहुंच जाएंगे जो पश्चिम की तरफ में चल रहे हैं। पश्चिम में चलने पर भी यदि बनारस उद्देश्य हो तभी वहां पर पहुंचेंगे। बैलगाड़ी से चलो या रेलगाड़ी से चलो चाहे कार से चलो, हम सभी एक ही जगह पहुंचेंगे। ये सब लोगों को भ्रमित करने के लिए है। बिना भक्ति के भगवान के पास में कोई नहीं जा सकता। भगवान से प्रार्थना तो करेंगे, यही तो भक्ति है, बिना प्रार्थना के वह पहुंच जाएंगे। इसलिए एक ही रास्ता बतलाया गया, गीता ने, भागवत ने, सब एक ही रास्ता बतलाया। और कहिए गीता में तो तीन पथ बतलाए गए, कर्म, योग, ज्ञान, भक्ति। ये नहीं, वो एक ही योग है। पहली स्थिति में उसका नाम कर्म योग, दूसरी स्थिति में उसका नाम ज्ञान योग या योग, और तीसरी अवस्था में उसी को भक्ति योग कहते हैं। योग तीन नहीं है, एक ही चीज। इसलिए समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है भगवान के प्रणाम करना, उनका नाम स्मरण करना, उनके प्रति भजन करना, भक्ति करना, यही सबका मूल उद्देश्य है। तो जब इसको होता है, ऐसे एक्सपर्ट को आजकल गुरु कहने में भी डर लगता है, ये लोग क्या कहेंगे, इसलिए एक्सपर्ट कह रहा है। एक्सपर्ट उसको कहने से कोई गड़बड़ नहीं, कहेंगे अरे ये गुरु, वो पुरानी पंथी का आदमी है, ये लोग कहेंगे। एक्सपर्ट कहेंगे तो इसमें कोई बात नहीं है, उसको भड़क, आजकल पूरी बात, पुरानी बातों को सुन करके लोग भड़क उठते हैं, विचार नहीं करते। तो जब भक्ति में वो प्रवेश करता है, जब बढ़ने लगता है, तो वो भक्ति, हम बतला रहे थे, एक अनिष्ठिता और एक निष्ठिता भक्ति है। ये जो बतला रहा हूँ कुछ ऊपर की बात, साधारण, सब साधारण के लिए ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, किंतु चूंकि हम लोगों ने एक ऐसा प्रसंग आरंभ किया है इसलिए बतला रहा हूँ, समझने की चेष्टा करें। निष्ठा के साथ में भजन करने को निष्ठिता भक्ति, और निष्ठा नहीं है और भजन कर रहे हैं वो एक भजन, एक घोड़े की गाड़ी है, घोड़े में लगाम लगा करके एक आदमी चला रहा है, वो पथ से चल रहा है, घोड़े चल रहे हैं, और एक को लगाम नहीं, कुछ नहीं, क्यों लगा दो, वो सरपट इधर उधर दौड़ रहा है, उसमें गिरने का खतरा है। और एक आदमी, बुद्धिमान आदमी, उसको कंट्रोल करके, हाथ में एक चाबुक भी है, लगाम भी है, चार घोड़े चल रहे हैं, चारों की बागडोर को वो ठीक से लेकर के चला रहा है, और वो ठीक सरपट चल रहे हैं, जहां हमारा गंतव्य स्थान है वहां पर उतार देंगे। उसी प्रकार से भजन का एक तरीका है, शास्त्रों में बतलाया गया है। स्कूल में पढ़ने आदमी जाते हैं, यदि अजी किताब से ही तो पढ़ते हैं, हम कहीं से किताब ले लेंगे, इन सची जिसको अलाउ करती है ना, उस ग्रंथ से पढ़ना पड़ेगा, उस पुस्तक को लेना पड़ेगा। लॉ बुक्स में, लॉ के कॉलेज में जो मान्यता प्राप्त पुस्तकें हैं, लॉ की पुस्तकें हैं, इंजीनियरिंग में जो हैं, विज्ञान में जो हैं, साहित्य में जो हैं, स्कूल में जो चल रही हैं, उसको लेकर के पढ़ने। ये नहीं, ये विज्ञान की पुस्तक है, हम कहीं से ले लिया और स्कूल में चालू नहीं है, और वो अपने मन से पढ़ेंगे, ये नहीं होगा। इसलिए एक उपयुक्त पद्धति है और एक अनुपयुक्त पद्धति है ना, भजन करने के लिए। जो उपयुक्त पद्धति को अवलंबन करके भजन करेगा वह सहज रूप में सरल रूप में उसको जल्दी से पालेगा। और जिस घोड़े की लगाम ठीक नहीं है, लगाम ही नहीं है, अपने तरफ से खूब सरपट दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी विपरीत दिशा में दौड़ता है, कभी गड्ढे की तरफ में दौड़ता है, कभी इधर में दौड़ता है, वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकता। उसी तरह से उपयुक्त पद्धति का अवलंबन करके उपयुक्त गाइडेंस में हमको चलना है। इसके लिए बतलाया गया एक निश्चितता और एक अनिश्चितता। गुरु से हरिनाम ले लिया, गुरु से दीक्षा ले लिया, दीक्षा का भारी मंत्र लिया है, दीक्षा नहीं हुई। दीक्षा एक दिन में नहीं होती, एक मिनट में नहीं होती, मंत्र तो एक मिनट में मिल जाएगा। दीक्षा किसको कहते हैं? दिव्य ज्ञान हो। स्कूल में भर्ती हो गए, स्कूल फाइनल नहीं हो गया, एमए बीए या और भी आगे बढ़ना, पीएचडी डिलीट करना है उस विषय में, अंतिम लक्ष्य हमारा वहां है, अभी तो कख गगा आरंभ किया है। उस तरह से दीक्षा के लिए यह मंत्र मिल गया और बस हो गया पूरा, ऐसा नहीं। जब अच्छी तरह से मंत्र लेने के बाद में अभ्यास करते करते करते, जैसे मैं बतला रहा था ये वाल्मीकि जी का कहा जाए राम राम करो तो उनको आया नहीं, कहा जाए अच्छा अच्छा यदि नहीं आता है तो तुम मरा मरा करो, वो मरा मरा कर, साथ ही साथ उसको फल मिल गया, एक दिन में मिला ना दो दिन में मिला। सुनते हैं ये 60,000 बरस लगे उस चीज को पूरा करने में, एक ही दिन में नहीं हो गया, किंतु उनका स्तर बढ़ता रहा। हम जो हरिनाम गुरु जी ने कहा जैसे इसके द्वारा हो जाएगा ठीक है कहते हैं, किंतु कहते हैं कि सुनते चलो, क्या चीज सुनो, स्तर बढ़ाने के लिए नाम का जो ग्रेड है इसको क्रमशः उत्तरोत्तर ऊपर करने के लिए ये कैसे करना चाहिए। अभी बेमन से होता है ना, मंत्र भी बेमन से होता है, चित्त इधर उधर दौड़ रहा, विशेष करके जिस समय मंत्र करने बैठेंगे देखेंगे मन बिना लगाम वाले घोड़े की तरफ में सरपट भगा जा रहा है, देखा जी कहाँ चला गया मन, फिर देखा जी मंत्र तो हुआ ही नहीं, वो उधर मन चला गया। इस तरह से 10,000 बरस तक नाम करने से कुछ होगा न, मंत्र करने से होगा नहीं। अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, एक चित एक एकाग्र होकर के उसको करेंगे, ये भी तो प्रश्न है साथ साथ। इसलिए जब ऐसा होने लगता है उसको निष्ठा भक्ति कहते हैं, निष्ठिता भक्ति, और जब तक ऐसा नहीं है तो अनिश्चिता भक्ति। अनिश्चिता भक्ति में पहले बतलाया बतलाया गया भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीला कथाओं और नाम इत्यादि का चिंतन करना चाहिए, भगवान का अर्चन पूजन करना चाहिए, भगवान को प्रभु और अपने को दास दासी समझ करके उनके प्रति भाव से कुछ करना चाहिए। जहां पर भगवान की लीलाएं हुई हैं उन स्थानों में जाकर उनको दंडवत परिक्रमा इत्यादि करना, आत्मनिवेदन करना भगवान के चरणों में, ये सब नौधा भक्ति हैं, नौ प्रकार के अंगों वाली ये भक्ति। नाम कर रहे हैं किंतु चित्त इधर उधर जा रहे हैं, हरिकथा सुन रहे हैं किंतु चित्त दूसरी जगह है, भगवान का स्मरण कर रहे हैं किंतु चित्त दूसरा है, ये अभी निष्ठा नहीं आई। इसलिए इस अवस्था में ये क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, कारण क्या, रुचि नहीं है। अभी रुचि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये हमारे पूर्व पूर्व जन्मों के हम लोग समझे न समझे कुछ ऐसे कार्य हैं, पाप जिसको कहते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो करने नहीं देते। संसारी कुछ आसक्तियां हैं, संसार में चित्त का इधर उधर लगना है, इसलिए उसको एकाग्र नहीं होने देता। इन कर्मों को तीन चार भागों में विभाग किया, अप्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कूट बीज इत्यादि। अभी हमारा जो शरीर हुआ है, पूर्व पूर्व जन्मों में हमने जितने कर्म किए हैं उसका संस्कार हमारे दिमाग में है। जब तक इस शरीर में बचपन से लेकर के अंत तक ये भोगना पड़ेगा, अनिवार्य रूप में, अनिवार्य रूप में इसका फल लेना पड़ेगा, चाहे लो चाहे न करो। जैसे दुख बिना बुलाए आता है, ऐसे सुख भी बिना बुलाए आएगा जरूर। तुमने जन्म लेने के पहले कौन सा ऐसा कर्म किया अभी इस जन्म में जो तुम्हारे बड़े घर में जन्म हो गया? क्यों हो गया? ये पूर्व जन्मों का है, इस जन्म में तो तुमने कुछ किया नहीं। एक आदमी अंधा ही जन्म लिया, उसने इस जन्म में क्या किया है जो उसको अंधा होना पड़ा? एक आदमी दरिद्र घर में जन्मा, क्यों जन्मा? क्यों? बाई चांस नहीं हुआ है ये सब, ये बाई चांस उसका जन्म हुआ होगा, ऐसा नहीं। इसलिए इनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। कुछ अप्रारब्ध कर्म जो बाकी हैं, जब वो अंकुरित होंगे उनके अनुसार में दूसरा जन्म होगा, तीसरा, ये लगातार कोटि कोटि तक ऐसा इन साइक्लिक ऑर्डर ये घूमता रहेगा। जब तक भजन नहीं होगा, भगवान को नहीं जान लेंगे, तब तक उस कर्म चक्र में घूमता रहेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। इसलिए हमारे ऋषियों ने आविष्कार किया कि भाई भगवान का सहज रूप में कुछ भक्ति करो, जो इस कर्म चक्र से निकल जाओ, अन्यथा निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब गुरु के पास में जाता है वो किसी संस्कार वश, आज ठीक है तुम भगवान का नाम करो, भजन करो, ठीक है, वो करने लग गया, किंतु ये पूर्व जन्म के पाप, प्रारब्ध कर्म, ये हमको उधर में लगने नहीं दे रहे, चित्त को इधर उधर कर रहे, बेकार की ये बात है। यहाँ पर आते हुए भी बहुत से लोग हैं जो नहीं आएंगे, न सुनेंगे इधर, न भगवान के नाम में रुचि है, तब तक हम कितना कर्म कर लेंगे, नहीं सुनेंगे भगवान की कथा हो रही है, नहीं सुनेंगे, ये बेकार की चीज, इससे पैसा आएगा या आमदनी होगी, कुछ कुछ नहीं होगा, विश्वास नहीं। इसलिए कहते हैं इच्छा रहने पर भी भजन में मन नहीं लगेगा, तो इसका कारण वो है पूर्व पूर्व जन्मों का हमारा अभ्यास, संस्कार और ये पाप तब या वैसे कर्म, इसलिए चित्त इधर उधर चला जाता है। वो व्यक्ति पहले जब आरंभ करता है, सोचा जी ये गुरु जी ठीक कह रहे हैं, शास्त्र भी वैसा कहते हैं, इसलिए हमको जरूर नाम करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो जबकि वो दीक्षा लेता है, गुरु जी कहते हैं देखो अंततः 16 माला तो करो, 16 माला करो, प्याज लहसुन मत खाना, जो तामसिक वस्तुएं हैं मत खाना, इससे तुम्हारा चित्त और चंचल होगा। अंडे मांस मछली ये सब तामसिक हैं, इनको मत खाना। जो लोग अत्यंत विषय धुरंधर हैं, दिन रात उनको विषय की चिंता है, ऐसे लोगों से जरा दूर रहना। जो बुरे स्वभाव के लोग हैं उनका संग मत करना, नहीं तो तुमको फिर वैसे ही संस्कार तुमको डाल देंगे। इसलिए अच्छे संस्कार जिनके हैं, जो भले आदमी हैं, सच्चरित्र हैं, वो चाहे गरीब हो चाहे धनी हो, इससे कुछ मतलब नहीं। जिनके विचार शुद्ध हैं उनका संग सोसाइटी में रहे। इसलिए वो कहते अच्छा तुम भजन करो, भजन करना आरंभ किया। सोचा जी गुरु जी ने कहा है 16 नाम करने के लिए, प्रारंभ ही कर दिया हमने 20 माला कर ली, बड़ा उत्साह, इसमें तो कुछ है नहीं, तो बहुत सारे रूप में हो गया। भगवान की कथा अच्छा, तो हमको गुरु जी ने कहा जी एक श्लोक गीता का या भागवत का पढ़, तो हमने 4-5 पढ़ लिए, ठीक है। गुरु जी से कहा जी आज हमने 20 माला की, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दूसरे दिन गुरु जी ने पूछा भाई आज भी 20 माला कर लिया तो? नहीं गुरु जी आज मेरी तबीयत खराब हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, आज तो कई एक माला मैं कर सका और नहीं नहीं कर सका, मैं बहुत लेट उठा, कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। इसका उपमा दिया है एक छोटा सा बच्चा पढ़ने के लिए गया स्कूल में पहली बार, भैया की गोद से निकल करके वो गया, उसको एक लाल पुस्तक खरीद दी जिसमें ओ माने आम और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर चित्र दिए हुए हैं और बड़ा सुंदर, और एक अच्छा सा नया रंगीन बैग दे दिया और अच्छे उसको ड्रेस पहना करके, और उसको बड़े प्यार से मैया गोदी में बैठा करके ले गई, कहा जी मैया रोज ऐसे ही ले आएगी और बैठा करके पढ़ाएगी, और उसको मिठाई दे दिया या लेमन जूस या जैसा चाहता है वैसे करते हुए स्कूल में लुभा लुभा करके ले गई। मास्टर ने कहा जी आज इसका नाम लिख लिया, नाम लिख दिया और कुछ देर तक रखा और उसको फिर लौटा दिया। दूसरे दिन जब सवेरा समय हुआ ना, कहा जी मैया स्कूल तो जाना है ना मुझे, एकदम तैयार होकर के सब कुछ लेकर के चला गया। मास्टर ने कहा आज इसको अक्षर लिखवाएं, अ लिखवाएं या क लिखवाएं या घ लिखवाएं, तो उन्होंने कहा जैसे ये स्लेट पर पेंसिल से लेकर के हाथ से ऐसा लिख दिया जी देखो ऐसा लिखो क, तो वो बनाने लगा, दिन भर चेष्टा किया क बनाने, कुछ बात नहीं चला गया। दूसरे दिन आया उसको मास्टर ने फिर उसको सिखलाने लगे क ऐसे होता है लिखो, दो चार बार लिखवा, जब नहीं हुआ तो थोड़ा सा कान गर्म कर दिया कान ऐठते ही रोने लग गया, आज तक किसी ने कान नहीं ऐठा मैया बड़ा प्यार करती थी, आज मास्टर साहब ने, तो उसका उत्साह जरा कम हो गया। तो पहले का नाम है उत्साहमयी भक्ति, नाम थोड़ा सा कर लिया, हरि कथा सुना, आज तुलसी जी की प्रदक्षिणा कर ली, ठाकुर जी के मंदिर में गए तो वंदना वंदना कर ली, और दूसरे दिन ऐसी कोई बात आई, कोई विपत्ति आई या कोई ऐसी बात आई जो आज कोई भी काम नहीं हो सका, या गुरु जी आज जब गए ना तो पहले बड़ा प्रेम से बैठाते थे, क्योंकि अभी नया आने वाला है ना, इसको जरा प्यार से नहीं बुलाएंगे तो ये नहीं करेगा और नहीं आगे बढ़ेगा, जबकि एक दो महीना हो जाता है ना तो कोई बात हुई तो डांट देते हैं, डांट से मन खराब हो जाता है, किंतु डांटना ही ये शिक्षा है। तो इसको पहले वाली का नाम है उत्साहमय, चला एक दो महीना किया हरिनाम भजन किया, इसके बाद में धीरे धीरे कुछ हासिल तो हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, जगत में तो कुछ ऐसा है जो कुछ जब हम काम करते हैं तो साथ ही साथ उसका फल मिलता है कर्मों का, किंतु इसमें तो लौकिक कोई फल है नहीं, जब देखता है कि नहीं मिला तो निराश हो जाता है जी भाई इतना हरिनाम किया हमारा शरीर में दर्द क्यों हो रहा है, हमने इतना हरिनाम किया और मैया बीमार पड़ी तो मैंने कहा जे हे प्रभु हमारी मैया को ठीक कर दो, तो मैया ठीक नहीं मर गई, तो ये फल कहाँ रहा भक्ति का, मैं नौकरी ठीक से कर रहा था किंतु नौकरी में हमको कोई कैफियत तलब कर दी गई, तुमने ऐसा क्यों किया, ये इतना दिन तो हुआ नहीं है मैं भजन करने लगा ये आरंभ हो गया, मन खराब हो जाता कुछ समय। इसी समय में लोग एक मैया थी बाल गोपाल की सेवा करती थी, उसका बच्चा बीमार पड़ा और बहुत मनौती की ठाकुर जी से, किंतु फिर भी बच्चा मर गया, उसने ठाकुर जी को लिया और मथुरा के जमुना जी में लेकर के डाले, जाओ हमको भजन की जरूरत नहीं है, ये सब निष्ठा उत्पन्न नहीं होने से होता है, यहाँ पर ये भक्ति से ही एकदम चली गई, मरना तो सब संसार को ही है, तुमको भी तो मरना है, इसलिए कहते हैं दूसरी स्थिति का नाम है घन तरला, कभी घनी कभी तरल, कभी उत्साह होगा कभी जब समझ में आएगा तब तो ठीक है, और जब समझ में नहीं आता नहीं कर पाता तो उसको कोई दुख आया तो फिर गड़बड़ हो गई, किंतु इस सब में भी रहते हुए भी समान रूप से यदि कोई चलता है हमको नियमित रूप से करना है। हमने गुरु जी ने हमने आज तक हमसे नहीं कहा या किसी से हमारे गुरु जी ये 16 माला करो, ये तो कॉन्सेशन दे करके स्वामी जी ने आरंभ किया पाश्चात्य देशों में। इंडियन गुरु ऐसा नहीं करता, यदि सचमुच में गुरु है नाम करो, हमको नहीं कहा जाए इतना करो। किंतु हम लोगों को क्यूरियोसिटी होती थी जैसे कितना करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो हम जब से मठ में आए प्रारंभ रूप में हमने चेष्टा किया जी हमारा नाम 1 लाख हो, प्रारंभ से ही 1 लाख नाम, इससे कम नहीं। यदि किसी दिन कम रह गया तो हमने सोचा जी आज हमारा साधन गड़बड़ हो गया, चेष्टा करते हैं इसके बाद में और सब साधन। इसे दिन भर में कहीं फुर्सत नहीं मिलती है हमको। यदि 16 बार करने से कुछ होता है तो हम 17 बार करें तो इसमें क्या हर्ज है? तो कोई कह देगा जैसे नहीं 17 बार करने से आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये बात नहीं है याद ही करने से। तो दूसरी हुई घन तरला। जब भजन में प्रवेश होता है नाम एक आदमी कर रहा है, एक रुचि के साथ में हो रहा है, रुचि से का साथ में कैसे होगा? श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण दिया गया है या चैतन्य महाप्रभु जी ने लिखा, श्रीमद् भागवत में और महाप्रभु का दोनों का तात्पर्य एक ही है। नैनंगल दास सुधारया बदनं गद गद रुद्धया गिरा पुलिकर निचितं बपुह कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। भागवत में ऐसा लिखा है वो एकादश स्कंद में। एवं प्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागो चित उच्चै हसत्ततो रोदति रौति गायत् नमादवत् नित्य।